नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप मोदी सरकार की जेल फैक्ट्री के बारे में जानते हैं, जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के अलावा प्रोफेसर, रिसर्चर, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 6-6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और फिर कई साल तक जेल में उन्हें सड़ाने के बाद सबूतों के न मिलने के आधार पर जमानत दे दी जाती है। इस फैक्ट्री में डाले गए लोगों में से कोई जेल में ही मर गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, किसी के जीवन के कई साल बर्बाद हो गए। सभी के परिजनों ने जो मानसिक यातना झेली, आर्थिक प्रताड़ना झेली, वो अलग है। जब भी इस जेल फैक्ट्री में किसी को डाला जाता है, गोदी मीडिया के एंकर लगाकर इन्हें जनता की अदालत में अपराधी साबित कर दिया जाता है। आपसे बार बार कहा जाता है कि अदालत पर भरोसा कीजिए, निर्दोष हैं तो जांच एजेंसियों का सामना कीजिए, लेकिन अब कई मामलों में यह साबित हो चुका है कि बात भरोसा करने की नहीं है, बात है उसकी नीयत की, जो सरकार के आलोचक लोगों को गंभीर से गंभीर धाराओं में कई साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं। इन तस्वीरों को आपने हमारे कार्यक्रमों में कई बार देखा होगा। भीमा कोरेगांव केस, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के नाम पर इतनी जिंदगियों को तबाह करने वाला केस बन गया है। इस केस के बारे में कैसे जाना जाए और कैसे बताया जाए? जिस तरह से जीएन साई बाबा के बाद शोमा सेन को 6 साल तक जेल में रहने के बाद अब जाकर जमानत मिली है, उससे तो यही लगता है कि केस पलट देना चाहिए और जांच एजेंसियों पर ही इन लोगों की जिंदगी तबाह करने का मुकदमा चला देना चाहिए। मगर कोर्ट ने आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, इसलिए जमानत देते वक्त अदालत की सख्त टिप्पणियों का इन जांच एजेंसियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। उनके लिए अदालत की फटकार सुनना रूटीन का काम हो गया है। भीमा कोरेगांव कोई मामूली मामला नहीं। इस केस में बंद 80 साल के स्टैन स्वामी जेल में ही मर गए। जीएन साई बाबा 90% विकलांग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी नौकरी चली गई और शरीर की क्षमता और कमजोर हो गई। सुधा भारद्वाज से लेकर आनंद तेलतुंबडे और उनके परिवार के लोगों को कितना कुछ भुगतना पड़ा। अगर आप इन कहानियों को समेट कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आतंक का एक राज किस तरह से खड़ा कर दिया गया है। पूरा का पूरा मैदान बोलने वालों और सवाल करने वालों से खाली कर दिया गया है और जो लोग इस तमाशे को देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, दरअसल वो भी इस जेल फैक्ट्री के डर से गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। एक बार आप इस किताब को पढ़ जाइए। अल्पा शाह की किताब भीमा कोरेगांव केस के एक एक डिटेल को रिकॉर्ड करती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी सरकार को चाहते हो, मगर इस किताब को पढ़ने के बाद चाहने का सारा भूत उतर जाएगा। अगर इस तरह से जांच एजेंसियां प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रेत के नाम पर पकड़ती रहीं, तो एक दिन आप इनकी हालत से डरते डरते सूख कर कांटा हो जाएंगे। हो भी गए हैं, इसीलिए इतनी नाइंसाफियां देखने के बाद भी आपके मुंह से आवाज नहीं फूट रही। धर्म का नाम लेकर आप अपने इस डर को छिपा रहे हैं। अल्पा शाह की यह किताब हार्पर कॉलिन से आई है, 699 रुपए की है। यह किताब आपको बता देगी कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर इतनी सारी जिंदगियों को तबाह कर दिया गया। कबीर कला मंच के दलित कलाकार, कवि, रंगकर्मियों को भी इस केस में बंद किया गया है। ज्योति जगताप, सुधीर धावले, गौतम नवलखा, वरवरा राव, हनी बाबू, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वर्नन गोंजाल्वेस, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत को इस केस में बंद किया गया है। जेएनयू कांड के बाद भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयोग इसी केस से शुरू होता है। किताब का टाइटल भी यही कहता है, भीमा कोरेगांव केस और भारत में लोकतंत्र की खोज। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 6 साल से जेल में बंद नागपुर यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत देते हुए जो कहा है, उससे एक बार फिर यह पूरा केस केंद्र की साजिश की तरह ही सामने घूमने लगता है। एक दिन जब सरकार को जेल भेजने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो वह अपने समर्थकों और चुप रहने वाले लोगों को उठाकर जेल भेजेगी, ताकि बाकी बचे लोग इसी तरह थर थर कांपते रहें और चुप हो जाएं। यह सच भी है, आज विपक्ष से ज्यादा समर्थक ही जेल के नाम से डर गए हैं, इतना बताना जरूरी था, वरना आपको लगता ही नहीं कि प्रोफेसर शोमा सेन की जमानत का आदेश इतना महत्वपूर्ण है। हम ये वीडियो बिल्कुल शोमा सेन और जीएन साई बाबा के लिए नहीं बना रहे, आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। अगर कोई आपके ईमेल में घुस जाए, आपकी तरफ से किसी को जवाब देने लगे, सबूत तैयार कर दे और एक ट्रेल बन जाए कि आप किसी अपराधी या आतंकवादी से बात कर रहे हैं, और फिर अगले दिन आप हमेशा के लिए जेल में ठेल दिए जाएं, यह बहुत आसान है, तब तो आपके हाथ में कंठी माला सुनकर धरी की धरी रह जाएगी, आप भी दबोच कर जेल में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है, यहां पर भी भीमा कोरेगांव केस की तरह न्यूज क्लिक केस में 6 महीने से जेल में बंद प्रबीर पुरकायस के लिए आवाज उठाई जा रही है। उनके प्रति समर्थन जताने के लिए नसीरुद्दीन शाह, पी साईनाथ, रत्ना पाठक शाह, डॉक्टर रघुनंदन, हर्ष मंदर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, एन राम, मल्लिका साराभाई, सीताराम येचुरी, गोपाल राय, वृंदा करात और प्रोफेसर सुचेता डे यहां मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा दूसरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में जुटते रहे हैं। भीमा कोरेगांव केस में जब एक एक कर प्रोफेसर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता धरे जा रहे थे, तब प्रोफेसर रोमिला थापर, लेखिका अरुंधति रॉय, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रताप भानु मेहता, आनंद पटवर्धन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। गोदी मीडिया के लिए इन लोगों का जमा होना भले कोई खबर नहीं, लेकिन उस गोदी मीडिया के लिए तो आप जनता भी खबर नहीं है। कोई कवर नहीं करेगा तो इसका मतलब नहीं कि लोग आवाज नहीं उठाएंगे। न्यूज क्लिक एक अच्छी खासी न्यूज संस्था थी, लेकिन कथित रूप से चीन से फंडिंग लेने के आरोप में छापा पड़ा और यह संस्था तबाह कर दी गई। इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस अक्टूबर महीने से जेल में हैं। इस केस का पैटर्न भी दिल्ली शराब घोटाले से मिलता जुलता है। इसमें भी एक करीबी को सरकारी गवाह बना लिया गया। प्रबीर पुरकायस वो शख्स हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उस समय भी जेल गए।
The question arises, if a person can be put in jail for 6 years without any prima facie evidence of the person being associated with any terrorist act or any terrorist group, then who is answerable for it? We are now in a situation where anybody can be put in jail without any evidence whatsoever. As a matter of fact, the NIA put up a case before the Supreme Court on Shoma Sen's bail, saying that bail is not a right, which of course the Supreme Court turned down. But we are now in a position where the argument is that a person can be put in jail without any evidence, but asking for bail is not a right. It is a complete inversion of what one would imagine is a fundamental right guaranteed under the Constitution. Now, this is the kind of inversion which you also find in the case of Probeer. I should say a little bit about the background. Plenty of searches, as we just heard, were made in Probeer's office, his home, and so on for incriminating evidence without any being found.
इससे पहले कि गोदी मीडिया के एंकर आपको लेक्चर दें, जिस तरह से संजय सिंह के केस में दे रहे थे कि अदालत पर भरोसा कीजिए, जांच एजेंसियां जो कह रही हैं वही सही हैं, आप जज नहीं हैं, उन सब को याद रखना चाहिए कि संजय सिंह के केस में 6 महीने तक जेल में रखने के बाद भी कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। किसने संजय को दिया, संजय ने पैसा किससे लिया, इसका कोई सबूत नहीं। होता तो जिस मामले में 2 साल से जांच चल रही है, ईडी सबूत पेश कर देती। ठीक यही होता लग रहा है 6 साल से जेल में बंद प्रोफेसर शोमा सेन के केस में। 6 साल तक इस बेहतरीन प्रोफेसर को जेल में बंद रखा गया। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने शोमा सेन को जमानत देते हुए कहा कि शोमा सेन पर लगाए गए आरोपों में यूएपीए के अपराध दिखाई नहीं देते हैं। इसका भी कोई आरोप नहीं कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। शुरुआती एफआईआर में उनका नाम भी नहीं था। शोमा सेन ने प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं की है, ना ही इस आरोप को पुष्ट करने वाला कोई संकेत है कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया या उसके लिए उन्हें पैसे मिले। उन्हें पैसे मिले हैं या आरोप केवल थर्ड पार्टी ने लगाए हैं। उनके खिलाफ किसी प्रकार की रसीद नहीं जिससे पता चले कि पैसे जुटाने में उनका हाथ रहा है। उनके प्रतिबंधित माओवादी संगठन से भी जुड़े होने के साक्ष्य नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई ऑडियो और वीडियो फाइल बरामद हुई है, लेकिन इन फाइलों में क्या सामने आया है इसका कोई ठोस प्रमाण कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। केवल यही पता चल रहा है कि कुछ डिलीट किया गया है। तो बताइए, पहली नजर में कोई संकेत तक नहीं, सबूत तो छोड़ दीजिए, कोई संकेत नहीं कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि शोमा सेन करीब 6 साल से जेल में हैं, वे 66 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। आदेश में लिखा है कि अदालत मानती है कि किसी भी प्रकार की आतंकी कार्रवाई करने का कोई प्रयास हुआ है, पहली नजर में इसके संकेत नहीं मिलते हैं। अदालत ने यह भी पाया है कि सेन पर आतंक विरोधी धाराएं लगाई गई हैं, तो दिखना चाहिए कि एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का मकसद रहा हो या पहुंचाया गया हो। यही नहीं, ऐसी कार्रवाई के पीछे आतंकी स्ट्राइक का इरादा रहा हो, लोगों में आतंक फैलाने की संभावना रही हो। लेकिन एनआईए ने जो भी सबूत रिकॉर्ड पर लाए हैं उसे देखने के बाद कोर्ट इन आरोपों को मानने से इनकार करती है। अब आप सोचिए, जिसे मन करे उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाओ ताकि बिना जमानत के जेल में सड़ा दो, या फिर आतंक की धारा यूएपीए लगा दो ताकि जमानत ना मिले। 6 साल बाद यह हालत है कि एनआईए के पास दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं, फिर इतने साल तक शोमा सेन की जमानत का विरोध क्यों किया गया? आप एक बात समझिए, मैं क्यों हिंदी के कई अखबारों को रद्दी अखबार कहता हूं? किसी में इस केस के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता है, इसलिए ताकि उसका पाठक कभी समझने के लायक ना रहे, नागरिक बन ही ना सके, झुंड बना रहे केवल धर्म के नाम पर। भीमा कोरेगांव केस में एक और आरोपी है, रोना विल्सन, जिस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की बात हमने की और कई कार्यक्रमों में की है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से कोई हैकर घुस गया। वह रोना विल्सन बनकर 2 साल पत्राचार करता रहा। इससे सामने वाले को लगता था कि रोना ही मैसेज कर रहे हैं। पुणे पुलिस द्वारा उनके लैपटॉप को जब्त किए जाने के बाद उसी हैकर के आईपी एड्रेस से अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए वायरस वाले ईमेल भेजे जाते रहे। कथित रूप से एक फेक पत्र तैयार किया गया जिसे रोना ने लिखा होता है और साजिश के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अल्पा शाह ने अपनी किताब में तो और भी खतरनाक बातें कही हैं। उनके आईफोन और लैपटॉप पर पेगासस के निशान मिले थे। पेगासस के सहारे उन पर निगरानी रखी जा रही थी और उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी दस्तावेज भी डाल दिए गए। इस किताब में अल्पा शाह ने विस्तार से बताया है कि कैसे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में सरकार के शीर्ष स्तर का हाथ रहा है। और जानने के लिए आप उनकी किताब खरीदकर पढ़िए, हार्पर कॉलिंस ने इसे छापा है। आर्सेनल इस बात की जांच करती है कि आपके फोन में, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालकर छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। यह दुनिया की जानी मानी कंपनी है जिसकी मदद कई सरकारों ने ली है। आर्सेनल ने अपनी जांच के बाद कहा था कि उन्होंने कभी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ का ऐसा मामला नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने शोमा सेन की जमानत के आदेश में कहा है कि जिन सारी चिट्ठियों और अन्य सामग्रियों की सूची यहां पेश की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी सह अभियुक्त रोना विल्सन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बरामद की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले सबूतों पर कोर्ट ने इतना ही कहा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें आरोप के लिए काफी नहीं माना। यह अपने आप में बड़ा संकेत है। जब इस केस में प्रोफेसर रोमिला थापर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर कई सवाल उठे। कोर्ट के सामने पर्याप्त सामग्री पेश की गई है जिससे लगता है कि इसकी जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस वक्त महाराष्ट्र पुलिस की इस बात की आलोचना की थी कि गिरफ्तार एक्टिविस्ट के खिलाफ सबूतों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई है और इसके ये सारे सबूत हैं। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा लोगों की राय को बदलने के लिए किया गया। मैनिपुलेट करने के लिए किया गया, क्योंकि तब इन गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस की काफी आलोचना होने लगी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी दिखाने के लिए जो पत्र पेश किया गया है, उस पत्र में मराठी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो सुधा बोलती भी नहीं है। आप कल्पना तो कीजिए, ऐसी चिट्ठी अगर प्लांट कर आपको जेल में ठूंस दिया जाए इस चिट्ठी के आधार पर, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि देश में यही सब होता रहे? सुधा भारद्वाज को 3 साल जेल में रहना पड़ा था। इसलिए आपको अल्पा शाह की किताब पढ़नी चाहिए, होश उड़ जाएंगे। जब आप धर्म के नाम पर बेहोश थे और थर्ड क्लास का गोदी मीडिया देख रहे थे, तब आपके ही नागरिकों को किस तरह की यातना दी गई, क्या यह मामूली बात है कि 6 साल बाद कोर्ट के सामने एनआईए ढंग का एक सबूत तक पेश नहीं कर सकी? क्या इस संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी संस्था है, लेकिन क्या इसे भी ईडी बना दिया गया है? ईडी संजय सिंह के केस में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, एनआईए शोमा सेन के केस में सबूत पेश नहीं कर पाई। दोनों ही संस्थाओं का यह तथा कथित पेशेवर काम 1 हफ्ते के भीतर देश के सामने आ गया। आप जानते हैं कि संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को निजी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जब आप किसी भी तरह से किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पास ठोस आधार होने चाहिए, तटस्थ और न्यायपूर्ण तरीके से प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, और जो तथ्य हैं उसी के अनुपात में ऐसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भीमा कोरेगांव केस में एनआईए की 6 साल की जांच को ध्वस्त कर देती है। 6 साल बाद अगर ये हाल है तो फिर इस केस में और क्या बचा होगा? इस केस में गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर रोमिला थापर ने कहा था, जिन लोगों को 28 अगस्त 2018 को अरेस्ट किया गया उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। हम मानते हैं, वो कह रही हैं कि 2 तरह का आतंकवाद होता है, दोनों ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है और लोगों में भय पैदा करता है। पहला आतंकवाद वो हुआ जिसे हम आतंकवाद समझते हैं, जिससे हिंसा होती है। दूसरा आतंकवाद राज्य का होता है जब वो असली अपराधियों को छोड़कर निर्दोष लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार करने लगता है। शोमा सेन के खिलाफ कुमार साई नाम के एक आदमी का बयान एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने लिखा है कि इस व्यक्ति ने 2 बयानों में शोमा सेन के खिलाफ इल्जाम लगाए हैं, मगर उससे पहले राज्य पुलिस को दिए गए अपने पहले बयान में उसने शोमा सेन के बारे में यही कहा था कि वे बुद्धिजीवी समूह के साथ मिलकर महिलाओं और छात्रों की समस्याओं का हल निकालना चाहती थी। इस बयान में उसने शोमा सेन का नाम नहीं लिया। क्या ये ईडी के केस से नहीं मिलता? संजय सिंह के केस में, केजरीवाल के केस में इसी तरह का हुआ, मगर कुमार साई ने अपने अगले बयान में एनआईए को दिया और उसमें शोमा सेन का नाम लिया, कहा सीपीआई माओवादी के साथ काम करने वाली अर्बन नक्सल है। शोमा सेन, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत और सुधीर धावले की गिरफ्तारी के अगले दिन पुणे पुलिस ने एक प्रेस वार्ता भी की थी और सभी तरह के कानूनी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस केस के कथित सबूत प्रेस में जारी कर दिए गए। पुणे पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने तब कहा था, हमें इस बात का यकीन है कि ये लोग अर्बन नक्सलिज्म के चेहरे हैं, हमें यह साबित करने के दस्तावेज मिल चुके हैं। अल्पशाह ने अपनी किताब में लिखा है कि ये सारे दावे रोना विल्सन के लैपटॉप पर मिले दस्तावेजों के आधार पर किए गए। इसके बाद इस केस में यूएपीए की एंट्री हो जाती है। जून में जिस दिन शोमा सेन के घर रेड हुई उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। इनके घर से कागज, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन इत्यादि सब जब्त हो गए। जब एल्गार परिषद हिंसा को लेकर 8 जनवरी 2018 को एफआईआर हुई तब उसमें शोमा सेन का नाम तक नहीं था। उसमें केवल एल्गार परिषद के आयोजकों का नाम था जिसमें कबीर कला मंच के कार्यकर्ता शामिल थे। 6 जून 2018 को शोमा सेन को हिरासत में लिया जाता है। इससे पहले इस मामले में कुछ लोगों के घरों पर महाराष्ट्र पुलिस की एक साथ रेड होती है। इसमें रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर धावले, ज्योति जगताप भी शामिल थे। ये सभी अभी भी जेल में हैं। उस समय पुलिस ने कहा कि इनके घरों से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं। कहा गया कि बैन सीपीआई माओवादी ने साजिश की है। इस मामले में 16 आरोपी हैं, अभी केवल 6 को ही जमानत मिली है। सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंडे, वर्नन गोंजाल्वेस, अरुण फरेरा, शोमा सेन छठी हैं। गौतम नवलखा को स्वास्थ्य कारणों से नजरबंद रखा गया है। गौतम नवलखा और मनोज राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेरिट पर बेल दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने ही उस पर रोक लगा दी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्टे को बढ़ा दिया है। इस केस के सबसे बुजुर्ग अभियुक्त स्टैन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में ही मौत हो गई थी। आपने जीएन साईं बाबा की रिहाई पर हमारा वीडियो देखा था। 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप तय कर दिए। अक्टूबर 2022 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी, मगर तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जमानत पर रोक लगा दी। शनिवार की छुट्टी थी, तब भी सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी। क्या आपको बताया जाता है बार बार कि एक विकलांग प्रोफेसर को जेल में डालने के लिए छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद यह मामला फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट गया और कहा गया कि फिर से मेरिट पर केस की पड़ताल हो। इसके 1.5 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से जीएन साईं बाबा को केस के मेरिट के आधार पर जमानत दे दी। उन्होंने जेल में कुल 3,588 दिन बिताए। उनके केस को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं कर सका। जीएन साईं बाबा के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होते हैं और इस केस में यूएपीए के प्रावधान नल एंड वॉयड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जो लिखा है आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो हताशा और शोक से भर जाएंगे कि क्या इस तरह से किसी को भी जेल में डालकर बर्बाद किया जा सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री की कथित हत्या की साजिश का केस इस तरह से खड़ा किया जाता है? क्या यही इसकी गंभीरता है कि कई कई साल बाद तक कोई सबूत ना हो और जमानत पर आरोपियों को छोड़ना पड़े? किसी भी तरह से देखिए तो यह केस जेल में बंद लोगों के जीवन को बर्बाद करने का ही मामला लगता है। इतनी क्रूरता की छूट तो किसी भी सरकार या अफसर को ना मिले, भले आप उस सरकार को कितना भी चाहें। इसीलिए प्रबीर पुरकायस से लेकर अरविंद केजरीवाल हों या भीमा कोरेगांव केस में बंद किए गए सामाजिक कार्यकर्ता हों या पत्रकारों के यूट्यूब चैनल जब बंद किए जाते हैं तब थोड़ा सतर्क हो जाइए, वरना एक बार संवैधानिक अधिकार हाथ से गया, राज्य का आतंक आपके घर में घुस जाएगा, तब धर्म भी आपको नहीं बचा पाएगा। आप बचेंगे तो केवल संविधान से ही। आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा कि पुलिस या जांच एजेंसी किसी को चोरी से लेकर आतंक के केस में फंसा दे? यह मामला केवल कुछ लेखक, वकील या चंद सरकार विरोधी लोगों का नहीं है, आम लोगों के साथ भी यही अत्याचार इससे भी बड़े स्केल पर होता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में इस पर कई ठोस वादे किए हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करती हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती, कुर्की, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीके, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतें और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस ने वादा किया है। कांग्रेस ने जमानत के संदर्भ में कानून बनाने का वादा किया है जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद है, और जेल सुधार का भी वादा किया गया है। इस तरह भीमा कोरेगांव केस भारत के लोकतंत्र की वो अंधेरी रात है जिसकी चादर कई कई साल में थोड़ी थोड़ी हटाई जाती है। 16 आरोपी हैं, अभी भी 10 लोग सुबह की रोशनी के इंतजार में हैं। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। सोचिएगा कि क्या ऐसा राज्य या ऐसी सरकार आपको चाहिए जो किसी को इस तरह से जेल में डाल दे? क्या आप चाहते हैं कि जेल भेज देने का वातावरण बना रहे? ऐसे माहौल में वे भी जेल का ही जीवन जीने लग जाते हैं जिनके जेल जाने का नंबर अभी नहीं आया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।